बाप कहते हैं योग अक्षर काम में न लाओ। बाप को याद करो, वो है आत्माओं का बाप। परम पिता पतित पावन, उस पतित पावन को ही याद करना है। दादा लेखराज ब्रह्मा के तने में बैठकर कहते हैं उस पतित पावन को ही याद करना है। बैठा है उसमें ब्रह्मा में, तो पास की तरफ इशारा करना होता है या दूर की तरफ? फिर
दूर की तरफ।
दूर की तरफ क्यों कहा? इसका मतलब है कि वो पार्ट पतित पावन का उस तन के द्वारा नहीं, कोई आने वाला भविष्य परमात्मा पार्ट है, और बताया कि योग अक्षर उसके लिए काम में नहीं लाना, क्योंकि योग होता है आर्टिफिशियल, जोड़ किया जाता है, और याद ऑटोमेटिक आती है। याद की नहीं जाती, लेकिन याद सताती है, स्वतः याद आती है, उसको कहते हैं सहज योग। और सहज होता है तो निरंतर भी होता है। बाप कहते हैं देह के साथ संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए जग पर ले, तो अपने को मारना मना। जीते जी इस पुरानी दुनिया के लगाव को तोड़ देना, देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद न करो। और जो इन आंखों से संबंध देखने में नहीं आता है, संबंध तो समान से ही जोड़ा जाता है, मैं साकार, तो जिससे संबंध जोड़ू वो भी साकार, लेकिन इन आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता। कोई आते हैं समझते हैं कि दर्शन करे हैं, तो यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है जिनका इन आंखों से दर्शन किया जाए, उसका दर्शन नहीं हो सकता इन आंखों से। कैसे दर्शन हो सकता है? वो अंदर की आंख है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है जिससे उसे पहचाना जा सकता है। तो इन आंखों से देखने के जो संबंध हैं उनको याद न करो, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब खत्म हो जाना है। तो भस्म होने वाली दुनिया से लगाओ क्यों? एक बाप को ही याद करो। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि नियम है जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों के साथ बुद्धि लगेगी तो चोरी चकारी के संस्कार आ जाएंगे, अगर ऐसे बाप को याद करेंगे जिसका स्वरूप ही बताया कि मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे, ऐसे पहले ही मुरली में बोला, तो याद की ऐसी अवस्था जमे, तुम्हारे पाप जन जाएंगे, तुम जन जन्मांतर की पाप आत्मा हो ना, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो, बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सब को भूलो, वो सब एक दुख सुख देते हैं, जो संबंधी न आँखों से देखने में आते हैं वो सब एक दूसरे को दुख देने वाले हैं, और जो सर्व संबंधी न आँखों से देखने में नहीं आता, मन की आँख से ही उसको पहचाना जा सकता, बुद्धि से ही जाना जा सकता, वो सुखदाता है। उन संबंधियों को भूलो, एक तो विकार कांटा बनाता है जो काम कटारी चलाते, दूसरा फिर पाप क्या करते हैं जो कुत्ते बिल्ली में बाप को कह देते हैं। कुत्ते बिल्ली का अवतार कब सुना, कच्छ मच्छ अवतार तो सुना, सुअर का अवतार तो सुना, सूकर अवतार, वाराह अवतार, कुत्ते बिल्ली में क्यों कह दिया है? उन कुत्ते बिल्ली की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी गायन चलता है, जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं भावनावर, उसकी शूटिंग तो संगम युग में होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ऐसे भक्त हैं जो समझते हैं कि कामी कुत्ते जैसे मनुष्य में परमात्मा आता है, या बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ने वाले में भी परमात्मा आता है, जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। है एक व्यापी और कह देते हैं सर्वव्यापी, है ऊंचे से ऊंचा, तो ऊंचे से ऊंचा जो होगा उसका घोड़ा भी ऊंचे से ऊंचा होगा या नीचा होगा? बड़े आदमियों का फर्नीचर कैसा होता है? ऊंचा फर्नीचर होता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आते हैं तो क्या कोई साधारण देवात्मा में प्रवेश करते होंगे? नहीं, पहले ही बताया हुआ है ऊंचे से ऊंचे बाप को जरूर ऊंच से ऊंच में प्रवेश करना पड़े, जो सबसे ऊंचा देवता परमात्मा नहीं, उसमें बाप आकर के प्रत्यक्ष होते, तो वो इस संसार में आता है प्रत्यक्ष होता है तो एक व्यापी होकर। बल बच्चों में भी प्रवेश करता है, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया हुआ। और अगर कोई कहता है तो बता दिया वो सब हिरणा कश्यप है। कौन? जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा बाप आता है, ये कहने की दरकार नहीं है। और तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के फोर्स के द्वारा, ज्ञान की लाइट से आत्मा और परमात्मा का फर्क स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा। जैसे चित्रकार ने चित्रण किया है शिवलिंग की लाइट और आत्मा की लाइट, शालिग्राम की लाइट, क्या अंतर दिखाया है? चित्र तो पुराने बने हुए हैं ना। भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बने हैं किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो ज्ञान की लाइट जिसने जितनी धारण की है वो प्रैक्टिकल में दिखाई तो पड़ेगी ना, अनुभव में तो आएगी ना। तो शिवलिंग की लाइट में और आत्मा रूपी शालिग्रामों की लाइट में क्या अंतर दिखाई देता है? शिवलिंग की लाइट बड़ी दिखाते हैं और शालिग्राम छोटा दिखाते हैं। तो ये पहचान है, इसलिए बताया भगवान वाच क्या कि जब मैं ब्रह्मा में आता हूँ, इनमें जब मैं आता हूँ तो पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान देते, ज्ञान से ही पता चल सकता है, ज्ञान की लाइट से ही पता चल सकता है, नहीं तो दूसरा कोई तरीका नहीं। तो मैं सर्वव्यापी होकर नहीं प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ। ये पाठशाला है, तुम आए हो पढ़ने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट। लक्ष्य जहाँ तक तुमको पहुँचना है, और कोई ऐसे नहीं कह सकता। कैसे? कि तुम्हारा लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनने का। ये लक्ष्य कौन दे सकता है सिवाय एक बाप के? और कोई ये लक्ष्य नहीं दे सकता। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। किस बात को? जब हम विश्व के मालिक थे उस टाइम को पूरे 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा टाइम हुआ? आज से 5000 वर्ष पूर्व कौन सा समय था, कौन सा युग था? यही संगम युग था। देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है विश्व के मालिक। जरूरी यह है बाप ही बनाएंगे। बनाएंगे किसके तन में कहा? ब्रह्मा के तन से कहा कि जरूरी यह बाप ही बनाएंगे। कौन से बाप? वेद के बाप भी दो बताए, एक आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु और दूसरा मनुष्य है साकार, तो मनुष्यों का बाप भी साकार होना चाहिए। वो शिव ज्योति बिंदु जिसमें पहले पहले प्रत्यक्ष होकर ज्ञान का बीज बोता है ब्रह्मा में, बड़ी माँ में, वो बाप हुआ साकार रूप में ब्राह्मणों का बाप प्रजापिता ब्रह्म। और बाप को ही परमात्मा कहते हैं। कैसी आत्मा? परम। किससे भेंट की? परमात्मा की भेंट किससे? परम। जब शब्द कहा गया तो सबसे बड़ा, तो किससे बड़ा, किससे परम? कोई से भेंट की गई? आत्मा से भेंट की गई। तो जो भेंट की जाती है वो क्या जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं से भेंट की जाएगी, या जो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, चक्र से ही अलग है, क्योंकि चक्कर में आए तो गिनती में भी आए, और चक्कर में नहीं आए तो गिनती में भी नहीं आ सकता, न अष्टरत्न में आ सकता, न 108 की लिस्ट में आ सकता, न ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आ सकता, न 16000 की 108 में आ सकता, न 9 लाख में आ सकता। वो तो हो गया अलग, उसकी किसी से भेंट नहीं की जा सकती। तो परमात्मा शब्द जब बोला गया तो किससे भेंट की गई? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो सबसे परम है, सबसे परे है, वो है परमात्मा। जब बोला जाता है तो परमात्मा शब्द पहले बोलते हैं या परमपिता शब्द पहले बोलते हैं? कहते ही हैं परमपिता परमात्मा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव शंकर, पहले कौन? शिव फिर शंकर। जैसे बाप दादा, पहले कौन? बाप फिर दादा। तो इसी तरीके से जो परम पिता है वो है सबका पिता। धर्म पिताओं का भी जो पिता है, क्योंकि धर्म पिताएं हुए साकार, तो धर्म पिताओं का भी कोई पिता, जिसको वो धर्म पिताएं भी आकर के नमन करते हैं, उसको माथा झुकाते हैं कयामत के समय, उसका तख्त अपने सर माथे पर उठाते हैं, तो वो तो हुआ साकार, जिसे कहते हैं आदम। लेकिन आदम कोई खुदा नहीं है, इसलिए कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। तो नूर माना लाइट, वो आदम ही विश्व का पिता है। विश्व पिता कहो या विश्व पति कहो या विश्वनाथ कहो, हिंदुओं में कह देते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, तो विश्वनाथ कहकर किसी तरफ इशारा करते हैं। कोई है ना जिसका स्वरूप योगीश्वर के रूप में दिखाया गया है? योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त कर सकता। तो बाप ही ये विश्व का मालिक बनाते हैं, जो है ऊंचे से ऊंच पद। कौन सा बाप बनाते हैं? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। और कौन से बाप को परमात्मा कहते हैं? परमात्मा कहते ही तब है जब वो सुप्रीम सोल जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो सबसे परम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तब कहते हैं परम पिता परमात्मा दोनों का मेल। जैसे कहते हैं पतित पावन, तो उसमें पतित भी है और पावन भी है, दोनों का मेल है। न उससे ज्यादा कोई पतित है और न उससे ज्यादा कोई एवर प्योर है। एवर प्योर और एवर इम्प्योर दोनों का मेल दिखाया गया, तो उनको कहते हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा। वैसे उनका असल नाम है शिव। ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए नकली नाम, और असल नाम हुआ शिव। मेरा एक ही नाम है शिव, वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है, फिर बहुत नाम रख दिए। तो असल नाम तो हो गया शिव, तो बाकी नाम क्या हो गए, जो बहुत नाम रखे हुए हैं वो सब क्या हो गए, जरूर असली नहीं है। कैसे हैं, जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे नाम रखे गए। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ मंदिर है, किसका नाथ, बबूलों का नाथ, बबूल जैसे कांटे, बड़े से बड़े कांटे दुख देने वाले। अर्थात कांटों के जंगल को फूल बगीचा बनाने वाला है, नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं किनमें, इनमें क्यों कहा, इसमें क्यों नहीं कहा, क्योंकि माता पिता के रूप में भी सृष्टि पर आता है, माता फीमेल और पिता मेल। तो हीरो हीरोइन जो इस सृष्टि के माता पिता हैं, एडम ईव या आदम हवा या शंकर पार्वती, तो इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम से वही है। तुमको इनको याद नहीं करना, यह तो देहधारी है। कौन, यह शब्द लगाया है इसका मतलब एक है। कभी कभी बोलने में सम्मान सूचना के लिए भी बहुवचन बोल देते हैं, तो ये है तो देहधारी है। कौन, ब्रह्मा, दादा लेखराज, क्योंकि ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जिसमें निराकारी स्टेज दिखाई गई, क्योंकि नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी माँ, ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ, माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार, बीज होता है निराकार, बीज माना बाप, बीज बाप ही होता है। जैसे धर्म पिताएं हैं, कोई भी धर्म पिता को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें, क्राइस्ट को देखें, गुरु नानक को देखें, उनके चेहरे से ही पता चलता है कि निराकारी स्टेज है। साकार शरीर होते हुए भी आत्मा जैसे निराकारी धाम में बैठी हुई है, तो ऐसा एक भी फोटो ब्रह्मा का नहीं है, क्योंकि साकारी अवस्था है। जिनकी निराकारी स्टेज बनेगी वो तो बीज होंगे, और बीज रूपी स्टेज वाली आत्माएं, उनमें कोई पाप नहीं रहता उस समय, जैसे कि उनके पाप धुले हुए होते उस स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज। तो देहधारी को याद नहीं करना है, देहधारी देह माना शरीर और धारी माना धारण करने वाला, ऐसी आत्मा जो शरीर से लगाव धारण किए हुए है उसको याद नहीं करना है। जिसका शरीर से लगाव टूट चुका है तुमको याद करना है देही आत्मा को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है उनको पावन बनाना है, ऐसे बनेगी। पतित आत्मा जिसका देह से कनेक्शन जुट चुका है, देह से लगाव हो चुका है, देह में रमण करने वाली बन चुकी है मिट्टी में, पावन कैसे बनेगी? देहधारियों के संबंध में आते आते पतित बने और विदेही के संबंध में आने से पावन बने। जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा, पेट में जैसा भोजन डालेंगे, एक स्थूल पेट भी है एक बुद्धरूपी पेट भी है संकल्पों का भोजन खाने वाला, तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। ये अन्न दोष और संग दोष सूक्ष्म में हो या बेहद में, वो सूक्ष्म में हो या हद में हो, दोनों प्रकार से संग का रंग जरूर चढ़ता है। तो आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है किसके संग से? जो पतित पावन निराकार है यानी निराकारी स्टेज वाला है उसके संग से। प्रैक्टिकल स्टेज होगी तो प्रैक्टिकल संग होगा, प्रैक्टिकल में है ही नहीं तो संग किसका करेंगे? ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी बहुत निराकार को याद करते चले आए, लेकिन भक्ति मार्ग 2500 वर्ष में वो निराकार सृष्टि पर साकार होता है क्या जो उसके संग का रंग लगे? पहचान भी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी पहचान वो स्वयं आकर के देता है। तो तुमको याद करना है देही को। कहते भी हैं महान आत्मा पापात्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं। क्यों? वास्तव में परमात्मा महान परमात्मा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो पाप पुण्य की स्टेज से परे हो जाता है। अपने को परमात्मा व ईश्वर कोई भी कह नहीं सकता, ये कहने की बात नहीं है। कहते ही हैं महान आत्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। किसका सन्यास करते हैं? सन्यास माना संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्याग। किस चीज का संपूर्ण त्याग करते हैं? अपवित्रता, अपवित्र देहधारियों का त्याग कर देते हैं। तो संग ही नहीं लगेगा तो रंग भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर बुद्धि से याद करते रहते हैं। जब वैराग आता है तो त्याग कर देते हैं। वैराग भी अगर सात्विक है तो कुछ समय तक वो स्टेज टिकेगी, लेकिन तामसी वैराग है झगड़ा करके निकले तो जो थोड़ी बहुत स्टेज टिकनी चाहिए वो भी नहीं टिकती। तो जब संन्यास करते हैं तो पवित्र आत्मा है, बाप ने समझाया है, वो भी सभी पुनर्जन्म लेती। जब पवित्र आत्मा है तो पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि शमशान ही वैराग आता है, भल घर घाट छोड़ देते हैं, फिर बुद्धि से याद आता रहता है। और भोजन किसका लेते हैं? पतितों के हाथ का भोजन लेते हैं, तो परम बंधन तो चढ़ेगा ना। तो उनको भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है जब तक निराकारी स्टेज न बने, निसंकल्पी स्टेज न बने। जैसे शिव परमात्मा निसंकल्पी स्टेज, कुछ पाना नहीं है, अपनी स्वस्थिति में सदा टिक रहने वाला सदा शिव है, और वो जिसमें प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है उसकी भी यह स्टेज होती कि पाना था तो पा लिया। और जो बच्चे बनते हैं बाप के, मनमना भव की स्टेज में रहने वाले, क्योंकि मनमना भव का अर्थ ही है मेरे मन में समा जा, माना मेरे अंदर जो संकल्प है विश्व के कल्याण का वो ही तेरे अंदर संकल्प रहे, वो हुआ मनमना भव। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। वाचा में भेद और कर्मणा में भेद ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन संकल्प मात्र भी बाप और बच्चे के संकल्प में विरोधाभास पैदा न होने पाए, वो हुआ मन मनामा। तो ऐसी स्टेज जिनकी बनती है वो फिर पुनर्जन्म नहीं लेते इस दुनिया में। इस दुनिया के जो भी देह के संबंध हैं उनमें आकर के उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दिख से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं सन्यासी तो सन्यास कर लेते हैं। देवता ऐसा नहीं करते हैं, न वो विष से जन्म लेते हैं और न बड़े होकर सन्यास करते हैं। देवताएं तो एवर पवित्र हैं। कौन से देवता हैं? 83 जन्म लेने वाले 23 नंबर के रजिस्टर में 55 पेज पर 1960 नवासी का पहला क्लास, पहले पेज का मध्यान। तो देवताएं तो एवर पवित्र हैं। जो 16 कला संपूर्ण होते हैं वो उन्हों को तो गृहस्थी घर में जन्म लेना पड़े सन्यासियों के, माना बल शरीर से पवित्र हो जाते हैं, शरीर से विकारियों का संग छोड़ देते हैं, लेकिन मन के संकल्प वो भी पवित्र हो जाते हैं क्या? मन मना भव माने परमात्मा के संकल्पों में समा जाते हैं क्या? नहीं समझ, क्योंकि उनको तो परमात्मा मिलता ही नहीं प्रैक्टिकल में, और हमको प्रैक्टिकल में परमात्मा मिलता है। और जो परमात्मा बाप का संकल्प वो हम बच्चों का संकल्प बन जाता है, हम निसंकल्पी हो जाते हैं। जो पाना था तो पा लिया, इच्छा मात्र अविद्या। तो हमको पुनर्जन्म इस दुनिया में नहीं लेना पड़ता। दैवी संप्रदाय कहते हैं सत्यगुण रहते ही है सत्यगुण, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में, और अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला, क्या कहा संगम युग कब तक है? संगम युग तब तक है असली जब तक तुमको बाप मिला। अगर बाप नहीं मिला तो कौन सा युग हुआ? तो कलयुग हो जाए। अगर सुप्रीम सोल बाप हमको मिल गया ये निश्चय है तो संगम युग है, और बाप भगवान नहीं मिला तो जैसे कलयुग है। कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना जरूर है, तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। ये कौन कहते हैं? जो बाप हमको संगम युग पर मिला है वही कहते हैं जरूर मुख से कहेंगे। कहने वाला प्रैक्टिकल में होना चाहिए, नहीं तो देवता बनाएगा कौन? क्या मनुष्य मनुष्य को बैठ करके देवता बनाएंगे? नर से नारायण कौन बना सकता है? मनुष्य बनाएगा क्या? सिवाय सुप्रीम सोल बाप के और कोई नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी नहीं बना सकता। मनुष्य को देवता बनाना ये एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। तो अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना जरूर है। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने, दैवी संप्रदाय में अथाह शोक है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक और देवताएं होते हैं अहिंसक। कौन सी दुनिया को हिंसक कहा जाता है? बाहर की दुनिया को, जो 500 करोड़ की दुनिया है उसको हिंसक कहा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया तो अभी हिंसक नहीं है। हिंसक है या अहिंसक है? अहिंसक। ब्राह्मण मनुष्य है या देवता है? तो जब तक मनुष्य है तब तक हिंसा जरूर है, और जब मनुष्य से देवता बन जाए माने संपूर्ण ब्राह्मण बन जाए तो संपूर्ण ब्राह्मण माना ब्राह्मण सो देवता। तो ये दुनिया है हिंसक और देवताओं की दुनिया होती है अहिंसक। यह था राजा तथा प्रजा। अभी राजा कौन है? कहेंगे शिव बाबा। शिव बाबा तो राजा बनता ही नहीं। उन राजाओं के सामने तो जाकर के थर थर कांपते हैं। अगर शिव बाबा अभी राजा होता और रोज कहता बच्चे ये करो ऐसे करो वैसे करो और बच्चे रोज नहीं करते, तो अगर राजा की कुर्सी पर बाबा बैठा हो जो राजाओं का भी राजा बनाने वाला है और उन राजाओं के सामने थर थर कांपते हैं, तो इस राजा के सामने क्या हाल होगा? अभी दुनिया कैसी है? हिंसक है या अहिंसक? ब्राह्मणों की दुनिया कैसी है? अहिंसक है। संपूर्ण ब्राह्मण है कोई? संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। संपूर्णता ही पूजी जाती है, अपूर्णता की पूजा नहीं होती। तो दैवी संप्रदाय में अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अब बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वो भी सब देहधारी हैं। किसने कहा और किससे कहा? तुम्हारे ये शब्द किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा ना, ब्रह्मा के तन से। तो सुप्रीम सोल किससे बात करता है? शूद्रों से बात करता है या ब्राह्मणों से बात करता है? ब्राह्मण से बात करता है। ब्राह्मण वही होते हैं जो ब्रह्मा की औलाद होते हैं। उनसे कहा तुम्हारे जो भी गुरु हैं सब देहधारी हैं। जो भी गुरु सब देहधारी, यानी ब्राह्मणों ने भी अगर कोई गुरु बनाए हुए हैं उनकी मत पर चलते हैं तो वो सब क्या है? देहधारी हैं। निराकारी कोई कोई नहीं, सब साकारी है। अच्छा ब्रह्मा गुरु, चलो किसी दीदी दादी दादा को किसी ने गुरु नहीं बनाया, ब्रह्मा या सरस्वती को गुरु बना लिया, मम्मा या बाबा को बना लिया, तो उनके लिए भी मुरली में कहते हैं। कोई मम्मा के मुरीद कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो डायरेक्शन देने वाली अलग अलग है ना। तो इसलिए बोला तुम्हारे जो भी गुरु लोग हैं सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना जो विदेही है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेगी। माना, अभी तुम्हारे पापों का पलड़ा भारी है तो सुख नहीं मिल सकता। जब तक पापों का पलड़ा भारी है इसका मतलब देहधारियों से कनेक्शन ज्यादा है और विदेही से कनेक्शन बुद्धि का कम है। जब विदेही से कनेक्शन जुट जाएगा, कितना टाइम बताया, 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे, तो मन बुद्धि निराकारी स्टेज में रहने वाली बन जाएगी। और मन बुद्धि जब निराकारी स्टेज में होगी तो फिर तुम पतित आत्मा नहीं कहे जाएंगे, तो त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे, पुण्य आत्मा की स्टेज में आएंगे, क्योंकि पुण्य का पलड़ा भारी होने लगेगा। जब तक पतित आत्मा है तो दूसरों को भी पतित ही बनाते हैं। तमो प्रधान आत्मा दूसरे की सर्विस नहीं कर सकती, क्या करेगी, जिस सर्विस ही करती। हाँ, हिम्मत करते हैं तो बाप प्रवेश करके मदद कर देता है। बस यही उनका श्रेष्ठ कर्म कहो या कुछ भी कहो, ये उनका प्रारब्ध बनता है। बाकी पतित आत्मा कोई समझ नहीं कर सकती। तो तुम तब पुण्यात्मा बनेगी जब तुम बाप को याद करेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते। क्या बात है, 21 जन्मों के बाद पाप आत्मा बनना शुरू होते हैं या 84 जन्मों के बाद है? ये क्या कह दिया, 21 जन्मों के बाद जो द्वापर युग में पहला जन्म शुरू होता है तभी से तुम पाप आत्मा बनना शुरू होते हैं, तो 84 जन्मों के बाद क्यों बताया है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बाप, तुम बच्चों से बात करते हैं, मैं तुमसे बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। ऐसे क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि ब्रह्मा से कार्य संपन्न नहीं होगा। जिसके तन में प्रवेश होकर के ज्ञान सुनाया उसके द्वारा सिर्फ ज्ञान सुनाने का पाठ था, माता के रूप में ज्ञान दूध पिलाने का काम था, बाकी पति से पावन बनाने का कार्य उस स्वरूप के द्वारा नहीं था, नई दुनिया बनाने का कार्य उस स्वरूप के द्वारा नहीं था। नई दुनिया किसके द्वारा बनाते हैं? संपूर्ण ब्रह्मा चाहिए, चार भुजा वाला ब्रह्मा दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। भुजा माना आत्मा, मददगार आत्मा कोई निशानी दिखाते हैं भुजा, तो चार भुजाएं माना चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन। दो आत्माएं प्रवेश करने वाली, ओम राधे और दादा लेखराज, और दो आत्माएं जिनके शरीर में प्रवेश किया जाए वो ब्राह्मण बच्चे। इसलिए बोला कि 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। कौन? बाबा के वारसदार बनने वाले राजा बच्चे तो 108 हैं, 16,000 तो सिर्फ राजा ही घराने में आने वाले, राजा ही का बनता नहीं पाते। लेकिन 108 राजा बनने वाले बच्चों में जो हीरो पार्टधारी बच्चा है उसके लिए ये बात बोली गई है कि 84 जन्मों के बाद तुम पाप आत्मा बन जाते, आखिरी जन्म में सबको पाप आत्मा बनना पड़े। तो अभी तुम पुण्य जमा करते हो, अभी माना कब, जब तुमको निश्चय बैठ जाता है पक्का ज्ञान के आधार पर, क्योंकि तीन मूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो मूर्तियों में कोई आत्मा भी बैठी होगी कि नहीं? मूर्ति तो साकार को कहा जाता है, और मूर्ति वो जड़ है या चैतन्य? चैतन्य मूर्तियां है ना, तीन मूर्तियां, उनमें तीन आत्माएं हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उनके तबके में कौन दिखाया जाता है सूक्ष्म वतन में? शंकर को। परम धाम के बिल्कुल नजदीक, तो जो ऊंचे तबके में है वो सबसे नजदीक है बुद्धि से, लेकिन वो भी अंतिम जन्म में आकर के सबसे जास्ती पापात्मा बनता, क्योंकि योग बल की बात है। संगम युग में जिन बच्चों ने जितना जास्ती परमात्मा बाप से बुद्धि योग लगाया, वो उतने ही जास्ती जन्मों का सुख अपने में भर लेते हैं, पुण्य करने के संस्कार भर लेते हैं, और जो कम याद कर पाते हैं, कनेक्शन उतना बुद्धि का नहीं जुट पाता है, बुद्धियोग संसार से नहीं तोड़ पाते हैं, तो उतनी ही कमी रह जाती है। अभी तुम पुण्यात्मा बन रहे हो, जबकि तुमको निश्चय है कि बाप हमको मिला है। 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, जो कयामत के समय में सारे संसार में चमकते हैं ऊंची स्टेज में, वो है धरती के सितारे। और इन सितारों में एक ही सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल रहता है, कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं हो सकता, बाकी सब सितारे अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं। फिर भी उस एक सितारे की चारों ओर चक्कर काटते हैं, अटल निश्चय की बात है। ज्ञान में आने के बाद, बुद्धि से अंजाम करने के बाद, जो जितना अपने निश्चय बुद्धि की स्टेज में अटल रहता है, वो उतना ही बड़ा पुण्यात्मा बन सकता है, परमात्मा बाप का नजदीकी बच्चा बन सकता है। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, कभी जब संगम युग में बाप से तुम आकर के मिलते हो, बाप को तुम पहचानते हो, निश्चय बुद्धि बन जाते कि बाप मुझको मिला है, योग बल से पापों को खत्म करते हो। किसकी याद की बल से? किसकी याद की बल से पापों को भस्म करते हो? ऐसे की याद के बल से तुम पापों को भस्म करते हो जिस पर पापों का बोझ चढ़ नहीं सकता। जैसे गीता में बोला है कि योग निष्ठा में स्थिर हुआ व्यक्ति सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उस पर पाप नहीं लग सकता। ऐसे क्यों बोला हुआ? जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे, तो ये हुआ निष्पाप स्टेज। आत्मा जो याद में रहकर, संपूर्ण याद में रहकर जो कर्म करती है, उस कर्म का बंधन बंधता ही नहीं। जैसे आंख खुली हुई है और महबूब अपनी खुली आंखों से देख भी रहा है, और कोई सामने से निकल जाता है, वो अपनी महबूबा की याद में है, तो उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा पर किसके संग का रंग लगेगा? जो आंखों के सामने से निकल गया उसका संग का रंग लगेगा या महबूबा का संग का रंग लगेगा? महबूबा का लगेगा ना। तो ये हुई असली याद। याद में इन इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से जो भी कर्म किया जाएगा, अगर बाप की याद एक्यूरेट है, मिक्स याद नहीं है, माँ में कम विविचारी याद नहीं है, तो उस याद का ये असर होगा कि कोई कर्म का पाप या पुण्य नहीं बनेगा। तो इसलिए बताया योग बल से तुम पापों को भस्म करते
जो तुम्हें
लैला मजनू की कथा सुनी है तो लैला हुई महबूबा और मजनू हुआ महबूब इसकी याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो विचारी याद की यात्रा से नहीं अब विचारी याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना कि नहीं थे हैं हम विश्व के मालिक थे तो आज की गवर्नमेंट भी झंडा ऊंचा उठाती है विश्व विजयी बन के दिखलावे तब हो गए प्राण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा और कौरव गवर्नमेंट वालों से जाके पूछो इस कपड़े के झंडे ने कभी और भी विश्व विजय करके दिखलाई थी इस कपड़े के झंडे से कोई विश्व विजय हो जाएगी कपड़ा माने शरीर जरूर कोई तीन मूर्तियां हैं तीन गुणों वाली जिनकी सूचना देने के लिए चित्रकार ने ये झंडा बनाया तीन रंगों वाला लाल रंग क्रांति का सूचक सबसे ऊपर क्योंकि क्रांति के बगैर शांति नहीं हो सकती तो लाल रंग है किसका सूचक कौन सी मूर्ति का शंकर का क्योंकि सब धर्म पिताएं आते हैं इस धरती पर पुरानेपन का विनाश कोई नहीं करता पुरानी मान्यताएं भी दुनिया में चलती रहती हैं पुराने धर्म भी चलते रहते हैं पुराने राज्य भी चलते रहते हैं और वो अपनी मान्यता भी ठोंक देते हैं तो दुनिया का थोड़े समय के लिए लगता है कि उत्थान हुआ लेकिन मकान में जैसे मरम्मत कर दी जाती ऐसे ही होता है कोई मरम्मत करने से नया मकान नहीं बन जाता दुनिया फिर भी नीचे गिरती चली जाती क्योंकि पुरानेपन का विनाश समूल नहीं किया गया तो यह है सबसे ऊंचा कार्य जो कोई भी धर्म पिता दुनिया में नहीं कर सका पुराने का विनाश और परमात्मा बाप सुप्रीम सोल जिसको अपनी देह नहीं है जरूर कोई मूर्ति का आसरा लेकर आधार लेकर वो कार्य संपन्न करते हैं तो यह है बड़े से बड़ा काम क्योंकि पुरानी मान्यताओं को समूल नष्ट करना उसके लिए फिर मुकाबला करना पड़ता है किसका जो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले हुजूम हैं उनका मुकाबला करना पड़ता है और उस मुकाबला करने से सब डरते रहे एक परमात्मा बाप ही ऐसा है जो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ प्रत्यक्ष नजर आती है तो बताया कि ऐसे योग बल से ही तुम्हारे पापों का विनाश होगा तुम विश्व के मालिक थे वो फिर कहाँ चले गए ये भी बाप ही बतलाते तुमने 84 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया नहीं तुमने 84 जन्म लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने कैसे भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता देहधारी को नहीं कहा जाता माना देहभान में रहने वाले को कोई भगवान नहीं कहा जाता भगवान है निराकार से उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते तो है ना नहीं तो मनाती क्यों हूँ परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदस्य जन्म नहीं लेता हूँ माना जैसे तुम गर्भ से जन्म लेते हो मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता हूँ दूसरे पेड़ की दूसरी लाइन मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है लोन लेना मन जिसका लोन लिया है उसको वापस करना पड़ेगी नहीं? वापस करना पड़ेगा। जो भी मैं तन लेता हूँ, धन लेता हूँ, जन की ताकत लेता हूँ, तुम्हारे सगे संबंधियों को लेता हूँ, वो सब तुमको यही वापस कर देता हूँ। बोलने के लिए भी लोन लेता हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए भी शरीर का लोन लेता हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उनका भी नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया है तो नाम ब्रह्मा रखा है। नाम कब बदलता है? जब कोई एक दुनिया को छोड़ देता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे सन्यासियों का नाम बदल जाता है, वैसे तुम्हारा नाम भी बदल जाएगा। क्या पहले दादा लेखराज, फिर नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मा। शरीर तो वही रहा ना, लेकिन नाम बदल गया। पहले कुछ और नाम होगा, बाद में नाम पड़ जाएगा संत। पहले कुछ और नाम होगा और बाद में नाम पड़ जाएगा वैष्णव देवी। तो ये नाम बदलते हैं तब जब देह और देह के संबंधों की दुनिया से पूरे मर जाए। अलौकिक ब्राह्मण परिवार के संबंधों में भी फरिश्ते नहीं आते, देवताएं नहीं आते हैं। देवताओं के पांव कहाँ पड़ेंगे? पवित्र धरणी पर। देह से संबंध रखने वाली बुद्धू की धरणी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ सकते। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, नहीं तो नाम ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा के बच्चे पैदा हुए तो ब्रह्मा कुमार यानी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्राह्मणी, ये नाम पड़ा। ब्रह्मा की औलाद ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्रह्मा बेटा किसका? ब्रह्मा किसका बेटा हुआ? ब्रह्मा साकार या निराकार? ब्रह्मा साकार, फिर बेटा किसका हुआ? कौन से साकार का? ब्रह्मा किसका बेटा, किसका बच्चा? हाँ, ब्रह्मा भी किसी का बच्चा है, किसी की रचना है, रचयिता की। क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध है। क्रिएटर साकार तो क्रिएशन भी साकार, आत्मा निराकार और परमात्मा भी निराकार। आत्माएं अनादि होती है, वो क्रिएट नहीं की जाती, तो उनका बाप भी, आत्माओं का बाप सिर्फ वो भी क्रिएट नहीं किया जाता, उसको हम रचयिता क्रिएटर नहीं कह सकते। बिंदु को, सुप्रीम सोल को, वो सुप्रीम सोल जब शरीर में प्रवेश करता है तब क्रिएटर बनता है। तो ब्रह्मा को बन्नी किसने बनाया? बन्नी बनने का संबंध साकार में होना चाहिए या निराकार में? निराकार आत्माओं में संबंध है। निराकार आत्माओं का पास निराकार आत्मा परमात्मा सिर्फ, आत्माओं का बात तो वो शिव है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई, भाई बहन का भी आपस में संबंध नहीं बनता। वो भी संबंध तब बने जब शरीर में प्रवेश करे, तो साधन सजनी का संबंध कैसे बनेगा? बनना बननी का संबंध बन सकता है बिना शरीर के? नहीं बन सकता। तो वो निराकार शिव जो परम पिता है, परमात्मा परम पिता, वो सृष्टि पर आकर के साकार शरीर में प्रवेश करे, फिर ब्रह्मा को अपनी बन्नी बनाए। तो बनना भी हुआ साकार में और बन्नी भी हुई साकार। तो जरूरी है कि आदि में कोई ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबू को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। मम्मा बाबा समझते तो ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गएंगे, वो भी गुम हो, क्योंकि उनका पार्ट था, बाप का शुरुआत का पार्ट होता है बीज बोने का और अंत का पार्ट होता है बच्चों को वर्षा देने का। तो आदि का पार्ट उस स्वरूप के द्वारा बजाय, तो नाम ब्रह्मा कब पड़ा? ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ बड़ी माँ, नाम कब पड़ा बिना बाप के? जरूर बाप भी तो हुआ होगा ना साकार में। जब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर दोनों साकार में चाहिए। तो ब्राह्मणों की रचना होती है साकार माता पिता के द्वारा। अगर साकार में माता पिता ना हो तो साकार ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए? ब्रह्मा बेटा शिव का, शिव बाबा अपने बच्चे में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको ज्ञान देते। क्या कहा? किसमें प्रवेश करते हैं? अपने बच्चे में, अपने बच्चे में प्रवेश करते हैं और इन द्वारा तुमको ज्ञान देते हैं। इस द्वारा क्यों नहीं कहा? क्योंकि गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बड़ा बच्चा कौन होगा? एक ही होगा कि दो चार होंगे? भारतीय परंपरा में बड़े बच्चे को वर्षा मिलता आया है या छोटे बच्चों को भी वर्षा मिलता आया है? राजाई का, राजाई का वर्षा तो हमेशा बड़े बच्चों को मिला, क्योंकि प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, लंबे समय की प्योरिटी। तो प्योरिटी से ही सारी प्राप्तियां होती हैं। तो इन द्वारा तुमको ज्ञान देते हैं। इन कहा बहुवचन माना रामकृष्ण की सोल, ये ज्ञान देने के निमित्त बनती है। लेकिन पहले पहले प्रवेश किसमें करता हूँ? अपने बच्चे के, शिव के, निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। वो है आत्मा जो फिर यहाँ आकर के शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। क्या कहा? सब बच्चे निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, वो भी निराकार आत्मा है, जो फिर यहाँ आकर के शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। तो क्या शंकर और विष्णु भी यहाँ आकर के पार्ट बजाते हैं? अभी बोला ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनके बच्चे हैं, निराकार बाप के सब बच्चे हैं, जो फिर यहाँ आकर, यहाँ माने कहाँ? साकार सृष्टि पर आकर ऐसे नहीं सूक्ष्म बतन में बैठे ही बैठे शरीर धारण कर पार्ट बजाते, तो साकार हुए ना। और साकार हुए तो संसार में उनकी मूर्तियां मिलती है। मूर्ति माने साकार और अमूर्त माने निराकार। तो शिव कहते हैं, शिव कहना अच्छा है या त्रिमूर्ति शिव कहना अच्छा है? हमेशा मुरलियों में बताया कि बच्चे त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। शिव जयंती नहीं होती कभी, शिव अकेला कभी जन्म नहीं लेता, शिव अकेला नहीं आता, जब भी आता है तो तीन मूर्तियों के साथ आता है, प्रत्यक्ष होता है। यज्ञ के आदि में भी तीन मूर्तियों के द्वारा इस संसार के गर्भ में आया और अंत में जब प्रत्यक्ष होता है, जैसे बच्चा संसार में प्रत्यक्ष होता है 9 महीने के बाद, तो भी तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इकट्ठी तीनों मूर्तियां चाहिए, नहीं तो पूरी प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। संसार निश्चय, संसार निश्चय, ये चलता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, आने का एम ऑब्जेक्ट क्या? सिर्फ ज्ञान सुना कर वापस चले जाना? इसलिए आता हूँ, मेरा आने का मकसद है ही पतितों को पावन बनाना। ऐसे नहीं कहते हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुनाकर चले जाओ। ज्ञान तो साधन है पतितों को पावन बनाने का। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, शिव भगवान वाच है ना, इस बात के लिए लोन लेता हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए भी शरीर का लोन लेता हूँ। इसलिए मुरली में बोला सारा शरीर चाहिए पतितों को पावन बनाने के लिए। क्या सिर्फ कान से ही संगकरण लगता है या सिर्फ आंख से ही संगकरण लगता है? अरे शरीर का कोई भी अंग हो संग का रंग तो लगेगा जरूर, ये तो अपना अपना लगाव है, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ जिनका जैसा जैसा हिसाब किताब है वैसा वैसा हिसाब किताब संगम गुरु में प्रत्यक्ष जरूर होगा। तो मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ शिव भगवान।